ना कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता भो निधे। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निमत्सरो पूजितो। प्रिय प्रिय करो निमत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो बारावंतारको। बारावंतारको वंदे सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालक। नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापक। लोकानितकारिण त्रिभुवने मन्यौ शरण्य करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन नंदन मतालिक। सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालक। श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वित। पापताप निकुन्तनोतन भृता गोविंद गानामृत। आनंदाम्बुद्वारदन कनिपुन कैवल्य निस्तारक। सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालक। त्वा पूर्णमशेषमण्डलपति shonim sada tuchava. Bhavadina Ganesha kau karunaya kau pina kanta shuto. Gopi bhavar samrita dilahari kallola magna moho. Vanda rupa sanatana raga yuga Sri Jiva Gopalaka. Kujat Kokila Hamsa Sarasa Gana Tirne Mayura Kula. Nana Ratnani Baddha Mula Yutapa Sri Yukta Vrindavane. Radha Krishna Maharnisham Prajajato Jivarta Doya Muda. Nanda Rupa Sanatana Raghu Gau Sri Jiva Gopalaka. Sankhya Purvaka Nama Gana Natidi Kalavasani Krita. Sankhya Chakyanta Dino Chala. Radha Krishna Guna Smritir Madurima Nandena Samhoyita. Sanatana Raghu Yuga Sri Jiva Gopalaka. Radha Kunda Pate Kalinda Tanaya Tire Chavamsi Vate. Shada Shesha Dashaya Grasta Pramatta Sada. Shada Shaya Grasta Pramatta Sada. Gayanta Chakada Harir Gunavara Govindava Vibhuta Mura. ছক বাহরের গুণ ভর বাবা বিভূত মুদা মন্দির সনাতন রঘুগ শ্রীজীব গোপালক রাগ ব্রজ দেব কে চলিত হে নন্দ সুন কুত শ্রী গণ কল্প পাদ পতলে কালিন্দি বন্যে কুত ঘোষন্তাবিতি সর্বত ব্রজপুরে কদর মহাবিবল বন্দে রূপ সনাতন রঘুগ শ্রীজীব গোপালক সনাতন রঘুযুগ শ্রীজীব গোপালক
জয় বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য স্তোত্র ষট হিজ ডিভাইন গ্রেস অভয় চরণ আদরপূর্বক সহা গোস্বামী শ্রী রূপ গোস্বামী শ্রী সনাতন গোস্বামী শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামী আনি শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামী এনা বন্দন করতো হে কদি রাধাকুন্ডাচ্যা তীরাবর কদি যমুনা তীরাবর তর কদি বংশীবটাজবল নিবাস করতাত ते कृष्ण प्रेमाने भक्ति विभोर भाग विभोर झालेले उन्मत्त व्यक्तीप्रमाणे वावरत असतात. अशा प्रकारे कृष्ण भक्तीच्या आनंदात मग्न असताना त्यांच्यामध्ये अविष्ट विकार प्रकट होतात. मी आदरपूर्वक सहा गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीजीव गोस्वामी आणि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी यांना वंदन करतो. ते वृंदावनात सर्वत्र अगदी मोठ्याने भगवंताच्या नामाचा गजर करीत आहेत. हे वृंदावनेश्वरी हे राधा राणी हे ललिता हे नंद नंदन आपण सर्वजण कुठे आहात? गोवर्धन पर्वतावर की यमुना तीरी असलेल्या वनात कुठे आहात? आपण कृष्ण भक्तीचे आचरण करताना त्यांच्यात असे विविध भाव प्रकट होत आहेत. ओम ज्ञान तिमिरंदस्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद গদাধর শ্রীবাসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ. তো শুভধা কে বারে মে রূপ গোস্বামী বর্ণন কর রে जो सुविधा है बताया जाता है कि उसके चार गुण हैं. या हम जान सकते हैं कि कौन उस शुभ प्राप्त करने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, भक्ति के शुभ से क्या परिवर्तन आना चाहिए. एक है सुसुकम, सबके लिए सुख प्रदान करना चाहिए. भौतिक सुख ऐसा नहीं होता. अगर मुझे सुखी बनना है तो दूसरों को दुख देना होगा. हम देखते हैं अगर किसी के पास कुछ पैसा कमाना हो दूसरों को पैसा गमाना होगा, इसलिए वो सुख नहीं है. वो बहुत लोगों को दुख देगा, जैसे हमारे मुख्य अतिथि बोल रहे थे, अगर एक को जॉब मिले तो 99 लोग दुखी बन जाते हैं। वो भी जानते हैं भक्ति सुख देती है, इसलिए भगवान चाहिए ताकि जितने भी दुखी है उनको सुखी बना सके। ये भक्ति का ही तत्व है, सबको प्रसन्न कर सकता है। दूसरा, ऐसे भक्ति के कारण सबके अंदर जो भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे सबके अंदर अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं, सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। और साथ साथ सुख तो चाहिए, कभी कभी लोग कहते हैं सुख के पीछे भागना ही नहीं है और भागते रहते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास रसो वैसह आनंदमय भाष्यात। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि हमारा स्वभाव क्या है कि आनंद को प्राप्त करना, लेकिन कैसा आनंद प्रदान कर सकता है? यहां का सुख नहीं, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद भक्ति हमें प्रदान कर सकती है। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, और कोई जो प्रक्रिया है वो ऐसा कह नहीं सकता कि हम इन चीजों को आपको दे पाएंगे, केवल भक्ति की जो प्रक्रिया है ऐसे घोषित कर सकता है कि इन सब चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो। और आगे क्लेशाग्नि और शुभधा, इसको हम कब जान सकते हैं कि हमारे क्लेश नाश हो रहे हैं, कब हम सुख को प्राप्त कर रहे हैं? इसके लिए कहा जाता है, आचार्य गण कहते हैं अदो साधु संग, और इधर अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा होती। जब निष्ठा आती है, निष्ठा के स्तर पर क्लेश अग्नि और शुभदा प्राप्त हो जाते हैं। अब जो हम देखते हैं, कभी कभी हमें सुख आता है भक्ति में, वो ट्रेलर है, लेकिन वो स्थायी नहीं, स्टेडी नहीं। जिस प्रकार से जब नारद मुनि व्यास देव जी से अपना कहानी सुनाते हैं, वो किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में आए थे, वो कहते कि जब मैंने ऐसे भक्ति वेदांतों की सेवा की तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो चले गए, मैं ध्यान किया मेरे माता के मृत्यु के बाद और मुझे भगवान का दर्शन हो गया और उसका एक अलग ही आनंद था। लेकिन जब मैंने फिर से प्रयास किया उसको प्राप्त करने के लिए, तो मैंने सुना कि अभी प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। तो वैसे जब हम भक्ति में आते हैं, पहले हमें एक सैंपल दिया जाता है, जैसे लोग बीड़ी का सैंपल देते हैं, वैसे भक्ति का सैंपल मिल जाता है। लेकिन उसके बाद में हमको भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, जब निष्ठा के स्तर पर आ जाएंगे, तब एक दोनों का हम अनुभव कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसा देखा जाए, ये जो भक्ति है इतने स्तर पर न होने पर भी भक्तगण अनुभव करते हैं उसका। कैसे? प्रभुपाद जी कहते देखो, हमारे जो भक्तगण है, जो पाश्चात्य देश के भक्तगण है, एक बार प्रभुपाद जी कह रहे थे, खास करके उनके जो बहुत ही कमिटेड शिष्यगण थे उनको कह रहे थे, उनको देखकर दूसरों को कह रहे थे, अगर आप इनको $1 करोड़ भी दे दो वो सिनेमा मंदिर में नहीं जाएंगे, वो नाइट क्लब में नहीं जाएंगे। क्यों? वो अलग ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हमारे स्तर पर भी, ये तो यहां रूप गोस्वामी किसके स्तर पर कह रहे हैं, निष्ठा के स्तर पर। लेकिन जैसे साधु का संग हो जाता है, थोड़ी सी भजन हो जाती है, तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत सारे ब्रह्मचारी है, बाहर से भी आए हुए, उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि बंबई दर्शन के लिए जाना चाहिए। हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से गुजरते रहते हैं लेकिन कोई ऊपर देखता भी नहीं है। क्यों? यानी कि उस स्तर पर भी लोग एक अलग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो आगे रूप गोस्वामी कहते हैं, आध्यात्मिक सुख जो कृष्ण भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख और भौतिक सुख में अंतर क्या है, शाश्वत है और दूसरा नाशवान है। चपल सुख हम प्रभुपाद जी के आमुख में देखा कि एक शाश्वत है। अगर किसी ने प्राप्त भी कर लिया भौतिक सुख को, वो शाश्वत नहीं है, इसलिए उसके पीछे भागना ये गलत है। इसलिए हमें सीधा उसका अंतर बता देते हैं कि एक शाश्वत है और एक अशाश्वत है। और दूसरा, भौतिक सुख में हमेशा लोग क्या करते रहते, वो विलाप करते रहते कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बहुत चीज होने पर भी वो हमेशा विलाप करते रहते, कोई कभी सुखी नहीं रहेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी में कहते हैं कि आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं है। वो क्या है, कृष्ण भक्ति के सुख में बाकी सब प्रकार के सुख भी आ जाते हैं, तो कभी भी उसको विलाप नहीं करना पड़ता। विलाप है कि आपको कुछ कम है। जैसे एक बार एक राजा ने अपने सारे प्रजाओं को, मंत्रियों को कह दिया कि मैं आपको एक बकरी देता हूं और उसको पूरा संतुष्ट बनाओ, वो पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। और उन्होंने उनको घास दिया, कुछ आधा एकड़ जमीन भी दिया, और उसके जो मिनिस्टर थे वो बहुत खिलाने लगे, उसको बहुत खिलाते थे। लेकिन जैसे उस बकरी को राजा के सामने लेकर आए, तो फिर से राजा ने उसके सामने घास आगे किया, फिर से उसने मुंह खोल दिया, तो राजा कहने लगे देखो संतुष्ट नहीं है, आपने कितना ही प्रयास किया लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो सका। लेकिन जो मायावादी लोग क्या करते हैं, वो कहते कि नहीं, हमको इसमें भाग नहीं लेना है। तो एक मंत्री था, उसने क्या किया, उसको अपने जमीन पर लेकर नहीं गया, वो अपने कमरे में उसको बंद कर दिया, और एक हाथ में घास और एक हाथ में छड़ी। जैसे मुंह में डालने के लिए आगे आता था, जोर से उसके मुंह पर मारता था, तो ऐसे मारते 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 उसको घास के प्रति वैराग्य अपने आप हो गया। तो जब राजा के बस लेकर आए, जैसे राजा ने घास आगे किया, वो भाग गया पीछे। तो इसका अर्थ नहीं वो संतुष्ट नहीं है, वो क्या है, वो डरता है। वैसे ही मायावादी और जो निर्विशेषवादी दार्शनिक है, उनको भौतिक सुख से ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी, बल्कि भौतिक सुख में वो घास खाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बार बार मार मिलने के कारण अब वो कहते घास नहीं चाहिए, हमें उससे वैराग्य उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं है, शुभदा ऐसे नहीं है। घास नहीं, घास मत खाओ, आपको और कुछ अच्छा मिल जाएगा। अगर कोई सूखी रोटी खाता है तो उसके लिए परोटा मिल जाएगा, तो निश्चित है कि वो रोटी खाना बंद कर देगा। तो यहां रूप गोस्वामी कहते कि ऐसी भक्ति में जो शुभदा प्राप्त करती है, जो शुभदा के स्तर पर आ जाती है, तो फिर अपने सारे सुख उसमें आ जाते हैं। फिर अलग से भक्त कभी प्रयास नहीं करता, चलो मेरा भक्ति है, हरिनाम का सुख अलग है, लेकिन सिनेमा का सुख अलग है ना, मुझे उधर भी जाना है, ऐसा नहीं है। एक बार सुख प्राप्त हो गया तो बाकी सब सुखों को छोड़ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते जो मायावादी है, इसलिए वो भौतिक सुख को छोड़ देते हैं, फिर ब्रह्म 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 अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करते रहते। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करते करते फिर से भौतिक कार्य में लग जाते और इतना घृणास्पद व्यवहार करने लगते हैं। एक बॉम्बे में ऐसे एक मायावादी है अभी भी, और उनका फिलॉसफी ऐसा था कि वो रेगुलरली शराब पिया करते थे, गाउटी नहीं, फॉरेन शराब एकदम साफ। तो कोई उनको मिलने गया था, उन्होंने देखा उनको पीते समय, उसने क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर जा रहा है, मैं ब्रह्मांड हूं, ये ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड पे जा रहे, तो क्या गलत है उसमें। जब आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती और उसी भौतिक सुख को वो गलत प्रकार से विकृत रूप से भोग लेने की इच्छा रखता है, इसलिए यहां रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे शुभ में अपने आप सब सुख आ जाता है, तो अलग से भक्त कभी प्रयास नहीं करता, सुख प्राप्त करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो सिद्धि भी है अलग अलग प्रकार के सिद्धियां है, भक्त कभी उसको अगर उसके पास होते भी उसको कभी वो उपयोग नहीं करता। कभी कभी लोग कहते हैं अगर हम लोग के पास सिद्धि रहेगा तो हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं। जैसे हम पहले हमारे मंदिर में पहले हर एक ब्रह्मचारी को कलेक्शन करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन वो बस में जाना ट्रेन में जाना तो बहुत कठिनाई होती थी। तो कभी कभी भक्त लोग सोचते थे अच्छा रहता था अगर मुझे उड़ने की सिद्धि हो, सीधा ऑफिस में चले जाने का, पैसा इकट्ठा करने का। यानी कि जो सिद्धि है वो इतना बड़ा प्रलोभन है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हो ऐसे सिद्धियों को प्राप्त करके जो जिनको कई सिद्धियां आती है, जो माइक सिद्धि है वो दिव्य सिद्धि नहीं है, माइक सिद्धि है, उन सिद्धियों को प्राप्त करके वो अपने अनुयायियों के प्रति इतना नियंत्रण कर देते हैं, उनके प्रति उनको अपने हाथ में ले लेते हैं और उनका पैसा छीन लेते हैं। एक बार एक ऐसे एक योगी मिले थे शिकागो में, राधानंद महाराज से मिले थे। फिर उन्होंने अपने कमरे में उनको बुलाया और कहने लगा देखो मैं कुछ सिद्धि दिखा सकता हूं। और उन्होंने कहा अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे करते ही ऐसे उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथ से दो रुद्राक्ष महाराज के हाथ में गिर गए। देख रहे वो कोई लंबा वाला हाथ का कपड़ा नहीं पहना था, दो रुद्राक्ष उनके हाथ में गिर गए। फिर उसके बाद देखते देखते जो भस्म है उसके हाथ से जैसे बारिश आता है वैसे आने लगा और पूरा रुद्राक्ष को भस्म से उन्होंने अभिषेक करवाया और उन्होंने कहा स्वामी जी आपके लिए गिफ्ट है आप ले जाओ। हमने देखा था वो रुद्राक्ष। तो फिर उसको महाराज ने पूछा इसका उपयोग किसके लिए करते हो? बहुत सरल है, जब मैं ऐसे सिद्धियों को दिखाता हूं बहुत आसान है इसको प्राप्त करने के लिए इन सिद्धियों को, लेकिन जब मैं इन सिद्धियों को दिखाता हूं लोग मेरे प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं तब मैं मेरी फिलॉसफी बोल देता हूं। यानी कि मेरे तत्व ज्ञान को समझाने के लिए मैं इन सिद्धियों का उपयोग करता हूं। तो इसलिए भक्त के पास सिद्धि होने पर भी सनातन गोस्वामी में कहते हैं कि ब्रज के हर एक ब्रजवासी में हर प्रकार की सिद्धियां है लेकिन वो कभी उसका उपयोग करते नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? वो कृष्ण को बांध सकते हैं। बड़े बड़े सिद्धि भी बांध नहीं सकते लेकिन यशोदा आसानी से भगवान को बांध सकती है, सबसे बड़ा सिद्धि है, ऐसे सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर सिद्धि किसी के पास है भी तो उसे क्या लाभ? अगर किसी के पास अनिमा सिद्धि है, अनिमा सिद्धि यानी कि शरीर को बहुत छोटा बनाना, इतना छोटा बनाना कि आप पत्थर में भी घुस सकते हो। प्रभुपाद जी कहते हो तो वैज्ञानिक लोगों ने कर दिया है, टनल के अंदर से आप चले जा सकते हो। कभी कभी टनल से पत्थर गिर के लोग मर भी जाते हैं लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने उसको बनाया है। और सबसे जो हल्का व्यक्ति है पानी में तैर सकता है, फ्लोट हो सकता है, तो वैज्ञानिक लोगों ने वो भी बनाया है। और जो सबसे हल्का व्यक्ति जो अनिमा सिद्धि जानता है वो पानी के अंदर काफी देर तक रह सकता है, इसे अनिमा सिद्धि का एक भाग जलस्तंभ। दुर्योधन भी जानता था, कालिया भी जानता था, पानी के साथ में पानी को लेकर पानी को पत्थर के समान बनाना और उधर ही बंगला बनाना पानी के अंदर। तो प्रभुपाद जी कहते वो लोग ने बनाए मरीन है, सबमरीन, वो पानी के अंदर 6-6 महीने के लिए रह सकते हैं। तो जर्मन स्कॉलर वो भारत में आकर इन्होंने ऐसे साधुओं को देखा, उनसे वो मिले थे, लेकिन क्योंकि भगवान के खोज में थे उन्होंने कहा ये तो सब हमने प्राप्त कर लिया है। कोई कह रहा था कि वो एक्चुअली में साधु से मिले थे जो पानी के ऊपर चल सकता था, उनसे पूछा कितने साल लगे इनको अवगत करने में, एक्सपर्टी प्राप्त करने में, उसने कहा 20 साल मैंने तपस्या किया। वो जर्मन स्कॉलर सोचने लगे मैं तो 5 पैसा देकर नाविक को, जो नाविक है पानी से पार कर सकता हूं, तो 20 साल के उसके लिए मैं वेस्ट करूं। तो वो जर्मन स्कॉलर है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बन गए। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा भी ग्रहण कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि जो सिद्धियां है, अनिमा सिद्धि शरीर को छोटा बनाना और लगीमा सिद्धि, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य किरण के साथ में सूर्य लोग जा सकते हैं। लोगों को चंद्र ग्रहण जाने के लिए भी बहुत पूरा झूठा कहानी बनाना पड़ता है कि हम चंद्र ग्रह पर गए थे, लेकिन यहां जिसको लगीमा सिद्धि है वो आसानी से जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इन सिद्धियों को वैज्ञानिक लोगों ने प्राप्त नहीं किया है। महिमा सिद्धि से शरीर को बहुत बड़ा बना सकते हैं, ह्यूज साइज शरीर को बना सकते हैं। और प्राप्ति श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बता इधर और अपने उंगली से चंद्रमा को स्पर्श कर सकता है उस सिद्धि के द्वारा। और प्रभुपाद जी ने एक कहानी सुनाया था, उनके पिताजी के एक मित्र थे और उनके गुरु वो कलकत्ता में आए थे एक बार, और उनके जो मित्र के पिताजी के गुरु के घर में आए थे तो उन्होंने क्या किया, वो गुरु जी ने ऐसा हाथ मारा और उनके अपने काबुल के, काबुल जो अफगानिस्तान में काबुल है वहां के दालिंब निकले, पोमोग्रेनेट्स फ्रूट्स फ्रेश ऐसे झाड़ से काबुल से निकाला था। प्रभुपाद जी कहते वो तो काबुल से भी निकाल सके और चंद्रमा को भी स्पर्श कर सकते हैं, हो गया प्राप्ति सिद्धि। और वशिता सिद्धि, वशिता सिद्धि यानी कि किसी को भी अपने प्रति नियंत्रण कर लेना और जैसे वो कहेगा वो व्यक्ति वैसे व्यवहार कर लेगा, उसका मन उसकी बुद्धि और उसकी वाचा सब कुछ अपने प्रति नियंत्रण कर लेना। और प्रकाम्य, प्रकाम्य यानी कि जो आपको चाहिए उसको आप प्राप्त कर सकते हो। और कामावसायिता सिद्धि, वो भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना नियंत्रण कर सकता है। तो मुख्य अष्ट सिद्धि है और जो योगीगण होता है उसके कम मात्रा में अपने पास वो ग्रहण कर सकते हैं और वो भी माहिक होता है यानी कि शुद्ध नहीं होता। जैसे भगवान योगेश्वर है उनके पास सब सिद्धियां है लेकिन जो योगीगण वो थोड़ा सा उसको प्राप्त कर सकते हैं और वो भी भौतिक दृष्टि से कलमश होता है। जनानिवास प्रभु एक बार कहानी सुना रहे थे, एक बंगाल में एक ऐसा ही किसी न किसी प्रकार से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली और सिद्धि प्राप्त करने के बाद देखिए अपने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया था, मन को शुद्ध नहीं किया था और वो सिद्धि वो किसके लिए उपयोग करता था, बंदर बनाकर वो घाट पर जाता था जब स्त्रियां स्नान किया करते थे, यानी कि सिद्धियों को भी प्राप्त करके बंदर की वृत्ति इसलिए बंदर भी बन गया। और अपने पत्नी को कह के रखा था कि इस मंत्र का या कोई औषध मुझे दे देने का, लेकिन प्रकृति बहुत फंसा देती है, वो किसी भी किसी प्रकार से जो औषधि उसके पास था वो पत्नी के पास वो किधर भूल गई तो फिर वो बंदर का बंदर ही रह गया, बंगाल में हुआ था असली कथा। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धियां है वो माइक भी बन सकते हैं और इसलिए हम देखते हैं बंगाल में और एक स्त्री है अनुर्विमत्वम, इस सिद्धि के द्वारा क्योंकि वो स्त्री थी वो जब उसका शादी हो गया तो अपने क्या कहते हैं उसको एंडलॉज ससुर, अपने ससुराल में बहुत खाया करती थी तो उसके जो मदर इन लॉ उसको हमेशा गाली देती थी कितना खाती है, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, वो किसी साधु के पास चली गई, उन्होंने उसको ऐसी सिद्धि दी कि तुम बिना खाने से जीवित रह सकती हो, अभी पता नहीं चली गई होगी वो। तो 50 साल तक उसने खाया भी नहीं था, पिया भी नहीं था, सोया भी नहीं था, इतना गुस्सा आ गया उसको। तो ये सिद्धि है, इसको भी कोई प्राप्त कर सकता है। और किसी के पास दूर श्रवण जीव गोस्वामी कहते हैं 22-23 प्रकार की सिद्धियां है, एक 8 मुख्य सिद्धियां और 15 जो गौण सिद्धियां। दूर श्रवण यानी कि उस घर में क्या चल रहा है, क्या प्रजल्प कर रहा है उसको आप सुन सकते हो, यानी कि प्रजल्प करने की जो शक्ति और बढ़ जाती है। दूर श्रवणम और दूर दर्शनम, यहां पर बैठ के उनके घर में टीवी में कौन सा सीरियल चल रहा है वो आप देख सकते हो। ये तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वृत्ति तो बदलती नहीं है। जैसे एक हमारे भक्त कह रहे थे, एक भारत में ऐसे एक योगी है, वो अपने शिष्यों को ले जाते समुद्र किनारे और कोई रामायण से मंत्र बोलते और समुद्र में पानी निकालते, पानी निकालते ही समुद्र से समुद्र ऐसा मंत्र समाप्त होते ही उनके हाथ में एक्चुअली मुद्रा आ जाती है, पर्ल्स आ जाते हैं, मणि आ जाते हैं। इसलिए समुद्र यानी कि समुद्र जहां आपको अनेक प्रकार के मोती ऐसे सब मिलेंगे। तो उसको देखकर उनका शिष्य बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो इतना ये हो गया, उनके प्रति आकर्षित हो गया, प्रभावित हो गया। फिर उस साधु ने दिखा, उसको दिया तो नहीं लेकिन ये बड़ा ऑफिसर उनको देने लग गया। तो इस प्रकार से वो उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, काम और रूप किसी प्रकार का वो शरीर धारण कर सकते हैं, परकाय प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, स्वच्छंद मृत्यु जिसे भीष्म देव को उनके पिताजी ने वो वरदान दिया था कि जब भी आप चाहोगे स्वच्छंद मृत्यु, आत्महत्या स्वच्छंद मृत्यु नहीं है। स्वच्छंद मृत्यु होने की वो ऐसे रस्सी पर अपने आप को टांग कर नहीं मरते, उसी समय जैसे उत्तरायण के समय भीष्मदेव ने अपने शरीर को त्याग दिया था। संकल्पित पदार्थ प्राप्ति, जो आपने संकल्प किया वो पदार्थ की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से योग सिद्धियां है, परंतु इन सब प्राप्त करने से ही रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते कि इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने से ही उससे कोई लाभ नहीं है। और भगवान का जो भक्त है, सिद्धयो परमाश्चर्य भुक्तिर मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदम भवेत गोविंद भक्तितः। कृष्ण भक्ति में लगने से अपने आप सब प्राप्त हो जाएंगे लेकिन भक्त इसका कभी उपयोग करने के लिए प्रयास नहीं करता है। केवल वो क्या प्रार्थना करता है, ऐसे आनंद में श्री रूप गोस्वामी हरि भक्ति सुदोदय से प्रहलाद महाराज जी का प्रार्थना करते हैं, अर्पण करते हैं। वो ऐसा प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मैं यही चाहता हूं कि मैं हमेशा कृष्ण भक्ति में लगे रहे, मेरा मन सतत आपके चरणों में रहे और मैं हमेशा के लिए जो भक्ति का सुख है उसका मैं अनुभव करता रहूं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते एक्चुअली शुद्ध भक्त इसकी भी प्रार्थना नहीं करता। प्रहलाद महाराज जी वो शुद्ध भक्ति है लेकिन प्रभुपाद जी कहते वो इसकी भी प्रार्थना नहीं करता, वो केवल सेवा में संलग्न होने की इच्छा रखता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कुल बीज श्रीधर का, आपने बहुत बार सुनाया होगा कथा और कल से फिर से सुनोगे, तो मुझे बोलना नहीं आता वो कथा लेकिन कृष्णा जी बड़े सुंदरता से बोलेंगे। लेकिन निष्कर्ष ये कुल बीज श्रीधर को महाप्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार थे लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि मुझे हमेशा आप हमेशा मेरे दुकान में आया करो और मेरे जो केले के पत्ते उसको चोरी करते रहो, यानी कि उस कार्य में इतना आनंद प्राप्त कर रहा था वो वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता था। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है 500 साल पहले। तो इसलिए रूप गोस्वामी इस शुभदा का वर्णन ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जैसे कि कोई रानी होती है, उसके पीछे सारे उसके जो सखिया है सेविका है सारा वैभव के साथ में जाता है, वैसे ही भक्ति के सुख में अपने आप सारे सुख उनके पीछे जाते हैं जैसे कि कोई दासिया रानी के पीछे जा रही है। ये होगा शुभ के बारे में। और रूप गोस्वामी आगे के जो दो गुण है मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभ, पहले के दो शुभदा और क्लेशाग्नि ये साधना भक्ति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये किस स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर। इसलिए कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमारा जो पेशेंस है धैर्य है उसको खोना नहीं चाहिए। कभी कभी एक दिन के अंदर हमको कृष्ण को देखने की इच्छा हो जाती है, गलत है। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात तब तक कर्म प्रवर्तनात, ये तीनों हमेशा होनी चाहिए। और ऐसे करते करते निश्चित है कि साधना भक्ति करते करते हम निष्ठा के स्तर पर आ जाएंगे और इसका प्रत्यक्ष रूप में हम अनुभव कर पाएंगे। कभी लोगों को बहुत उत्साह होता है लेकिन धैर्य नहीं होता, उसको गिरिराज महाराज कहते हैं एंथुसियाज्म विदाउट पेशेंस इज फॉल्स ईगो, वो मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन है। और बहुत धैर्य बहुत उत्साह नहीं है, वो क्या है आलस लेजीनेस। इसलिए दोनों का समन्वय होना चाहिए, उत्साह भी होनी चाहिए और धैर्यता होनी चाहिए, धैर्यता के साथ में उत्साह भी होना चाहिए। अगर केवल धैर्यता है उत्साह नहीं है, हम देखते कई लोगों को काफी साल से आते रहते हैं, चार माला दो माला के ऊपर जाते नहीं, बहुत उनके अंदर पेशेंस है लेकिन वो पेशेंस नहीं है, वो लेजीनेस आलसपना है। और कई लोगों के पास बहुत उत्साह है, कब तक, छह महीने के लिए, एक साल के लिए, नहीं, पेशेंस भी चाहिए। जब इन दोनों का समन्वय हो जाता है तब हम इन चीजों को जान सकते हैं साधना भक्ति के स्तर पर। और मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभ, ये दोनों है भाव भक्ति के स्तर पर। भाव भक्ति कभी आती है निष्ठा तथा रुचि तत्व भाव, और उसके बाद प्रेम। भाव यानी कि प्रेम का जब अंकुर आ जाता है उसे भाव कहा जाता है। तो भाव के स्तर पर मोक्ष लघुता कृत, जो भगवान मोक्ष प्रदान करेंगे, वैकुंठ जाने की इच्छा या भगवान के धाम में जाने की इच्छा, इन सभी को वो कहेगा मुझे स्वीकार नहीं है केवल उस स्तर पर। नहीं तो हमारे स्तर पर अभी भी हम गंगा जाने की इच्छा करेंगे, अमेरिका जाने की इच्छा करेंगे, इधर जाने की इच्छा करेंगे, उधर जाने की इच्छा करेंगे। केवल भाव भक्ति के स्तर पर वो सबको तुच्छ मान सकता है। और रूप गोस्वामी भाव भक्ति के लिए बहुत कम कहते, आगे बताएंगे। वो कहते कि अगर कोई कृष्ण के प्रति थोड़ा ही आकर्षण जागृत कर लेता है तो उसको सारे जो चार वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो घास के समान लगने लगता है, उसको ज्यादा महत्व नहीं देता, वो घास के समान उसको उसको स्वीकार नहीं करता, उसको छोड़ देता है। और कहते हैं कि जो ऐसे भगवान की भक्ति करते तो मुक्ति तो क्या बन जाती है, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवितम, तो मुक्ति स्वयं आकर खड़े हो जाती है भक्त के द्वार पर उसकी सेवा करने के लिए। यानी कि भक्त अपने भक्ति के द्वारा मुक्ति को भी तुच्छ करके देख सकता है। और आगे रूप गोस्वामी दूसरा जो गुण है जो भाव भक्ति का सुदुर्लभ, ये बहुत ही टेक्निकल है लेकिन कभी कभी हम प्रश्न करते हैं कि हम भक्ति में कैसे आ गए। तो यहां जो सुदुर्लभ रूप गोस्वामी कह रहे हैं वो जो भाव भक्ति का जो प्रेम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि क्यों एक सुदुर्लभ है, क्यों भगवान कृष्ण इसको प्रदान नहीं करते है। एक है कि भाव भक्ति जो समझना कि मुझे केवल भक्ति ही चाहिए, वो सुदुर्लभता को जानना और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, भाव भक्ति को प्राप्त करना, रूप गोस्वामी कैसे कहते कि साधना भक्ति से नहीं होती है, जप करने से नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते बहुजन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तब पाए कृष्ण पाद प्रेम धुन। बहुत श्रवण कीर्तन, अगर बहुत जन्मों के लिए आपने श्रवण कीर्तन किया हो फिर भी आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत डरावना है, कहते कि कभी कभी जप करने से बहुत पुण्य होता है। हाँ, क्योंकि अगर कोई अपरायुक्त नाम जप कर रहा हो और प्रयास ही नहीं कर रहा अपने आप को शुद्ध बनने के लिए, लेकिन मैकेनिकली यांत्रिक दृष्टि से हरि नाम कर रहा है और दूसरे भक्तों के प्रति द्वेष कर रहा है, तो क्या होगा? वो तो प्रेम तो प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन उसको भूत का शरीर प्राप्त करना होगा। इसलिए प्रामाणिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो साधना के द्वारा हम इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो साधना के द्वारा नहीं होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान भक्ति किसी को प्रदान नहीं करेंगे, मुक्ति दे सकते हैं। अगर हो सके मुक्ति वो प्रदान करेंगे, स्वर्ग का सुख दे देंगे, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देंगे। और क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसे अगर किसी को भगवान भक्ति देते हैं तो क्या हो गया? भगवान उनके सेवक बन जाएंगे, भक्त उनको खरीदी कर लेता है। अपनी भक्ति के द्वारा वो भक्त भगवान को अपने प्रति आकर्षित करके भक्त भगवान पूरे भक्त के बन जाते हैं। तो कौन अपने आप को बेचेगा? अपने आप को बेचना कोई साधारण चीज नहीं है। हम देखते हैं अमेरिका में जो स्लेव